ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आप सब परमात्मा पिता के भाग्यशाली बच्चे पिछले 3 दिन से ज्ञान गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। शास्त्रों में कहावत है कि मानसरोवर में जो डुबकी लगाता है वो हंस बन के निकलता है, तो मुझे भी आप सब होली हंस नजर आ रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे काल चक्र की। कहा जाता है कि समय बड़ा बलवान है, समय के आगे किसी की भी नहीं चलती। समय कहो काल कहो बात एक ही है। समय को बलवान क्यों कहा जाता है? देखने में आता है कि समय प्रति समय समय हमसे एक रिस्पॉन्स मांगता है कि हमें इस परिस्थिति में किस प्रकार प्रति उत्तर देना है, प्रतिक्रिया करनी है। जो समय के इशारे को समझ जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलती हैं, उनका जीवन तो महान बन जाता है। लेकिन जो समय के संकेत को पकड़ नहीं पाते, अपनी दिशा को श्रेष्ठ तरफ मोड़ नहीं पाते, समय के इशारे के अनुकूल चल नहीं पाते, तो उन्हें बाद में बहुत पश्चाताप होता है। उनके लिए समय बहुत चुनौतीपूर्ण बन जाता है, क्योंकि समय कहता है आपको ये करना है। और व्यक्ति अंदर से करना नहीं चाहता, समय दबाव डाल के मजबूर करके करवाता है। तो मजबूरी में दबाव में जो काम किया जाता है वो अंदर ही अंदर दर्द पैदा करता है। करना पड़ता है ऐसे मुख से निकलता है। इसलिए कहते हैं अगर आप समय के अनुसार नहीं चलेंगे तो समय फोर्सफुली आपको अपने अनुसार चलाएगा। तीन प्रकार के लोग हैं। एक है जो समय के इशारे को कैच करके उसके अनुकूल तुरंत चल पड़ते हैं। दूसरे हैं जिन्हें समय अपने अनुसार चलने के लिए मजबूर करता है। और फिर तीसरे भी हैं जो समय के फोर्स के बाद भी नहीं बदल पाते, तो उनका तो अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है। पहले वाले आनंद का जीवन जीते हैं, दूसरे मजबूरी का जीवन जीते हैं, और तीसरे अस्तित्व से ही हाथ धो बैठते हैं। इसलिए हमारे यहां कहावत प्रचलित है कि समय की मार बहुत कठोर होती है। और आजकल समय प्रबंधन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। समय प्रबंधन के टिप्स देने वाले कहते हैं कि आप सुबह सुबह अपना टाइम टेबल बनाओ और जो कार्य हैं उनको प्रायोरिटी के हिसाब से सेट करो। पहले मुझे ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। चलिए हमने टाइम टेबल भी बना लिया और प्रायोरिटी के हिसाब से सेटिंग भी कर ली, लेकिन फिर भी होता क्या है कि दिन भर में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, ऐसी बातें आती हैं, ऐसी चुनौतियां आती हैं कि वो एक छोटी सी चुनौती हम पे हावी हो जाती है, हमारा बहुत सारा टाइम कंज्यूम कर लेती है, हमारे संकल्पों को, समय को तितर बितर कर देती है, और फिर उसी में उलझे उलझे रात हो जाती है तो हम कहते हैं अरे सोचा क्या था, हो क्या गया, आज का दिन इस छोटी सी बात ने पूरा ही खराब कर दिया। तो समय प्रबंधन किया था, लेकिन समय प्रबंधन के अकॉर्डिंग चलने के लिए भी समय का ज्ञान चाहिए, चुनौतियों का ज्ञान चाहिए, परिस्थितियों का ज्ञान चाहिए, परिस्थितियों से पार जाने का ज्ञान चाहिए। और ऐसे एक एक दिन करते पता नहीं जिंदगी के कितने दिन चले जाते हैं। तो समय बड़ा बलवान है, उसके आगे किसी का जोर नहीं चलता। अंग्रेजी में कहते हैं टाइम टाइम साइकिल। पुराने समय में लोग मानते थे टाइम इज लीनियर, सरल रेखा की तरह चलता है, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने टाइम पे भी शोध किया तो ये निष्कर्ष निकाला टाइम इज नॉट लीनियर, इट इज साइक्लिक। क्योंकि आप कितनी लंबी लाइन लगाएंगे टाइम को मापने के लिए, टाइम तो एंडलेस है, लेकिन हमारी लाइन तो एंडलेस नहीं हो सकती, उसका तो अंत आ जाता है। और वैसे भी समय को मापने के जितने भी साधन है वो सब साइक्लिक, सबसे पहले तो घड़ी है वो भी साइक्लिक है, 12 के बाद फिर एक बज जाता है, रेलवे में 12 के बाद 13 बजते होंगे, पर वहां भी 24 के बाद 25 नहीं, फिर से एक से शुरुआत हो जाती है। समय को मापने के इस बड़े टाइम साइकिल में जो छोटे छोटे साइकिल है उन पे हम एक नजर डालें। अब ये छोटा सा साइकिल तो डे एंड नाइट का है, उसमें चार पहर है, पहला दूसरा दिन के रात के चार चार मिला के आठ हो जाते हैं, आठ पहर होने के बाद फिर पहला पहर आ जाता है, रात के बाद फिर दिन आ जाता है। उसके बाद आप साल का चक्र देखिए, 12 महीने पूरे होते ही फिर से जनवरी फरवरी आ जाता है, चैत बैसाख आ जाता है। ऋतुओं का चक्र देखिए, अभी सर्दी है उसके बाद बसंत ऋतु आएगी, फिर ग्रीष्म काल, उसके बाद बरसात और फिर सर्दी आ जाएगी, ये भी एक चक्र है। पानी का भी चक्र है, आसमान में बादल बने, समुद्र के पानी को सोख करके वो बरसे, पानी नदी में गया, नदी समुद्र में समा गई, समुद्र का पानी फिर वाष्प बन के उड़ गया, साइकिल है पानी का भी। जीवन का भी एक साइकिल है, बच्चे बने, जवान बने, अधेड़ हुए, वृद्धावस्था आई और उसके बाद फिर पुनर्जन्म में बच्चे बन गए। तो ये छोटे छोटे साइकिल हैं और इन सब से मिल करके जो बड़ा साइकिल बनता है उसको हम कहते हैं कल्प का साइकिल, कल्प का चक्र या सृष्टि का चक्र या मानवीय सभ्यता का चक्र, मानव के उत्थान पतन की कहानी का चक्र, वो सबसे बड़ा चक्र है। आज हम उसी बड़े चक्र की चर्चा कर रही हैं, क्योंकि छोटे छोटे चक्र तो हमें आंखों के सामने दिख जाते हैं, डे एंड नाइट कोई कंफ्यूजन नहीं, हम देखते ही हैं, साल का चक्र भी हम देखते ही हैं, शताब्दी का चक्र भी कोई कोई देख लेता है, लेकिन युगों के चक्र को कोई नहीं देख पाता है, युग भर कोई जीता ही नहीं। तो युगों के चक्र के बारे में कंफ्यूजन है, कौन सा युग कब आया, कौन से युग की कितनी आयु है, अब इस कंफ्यूजन को कौन दूर करे, इसको वो दूर करे जो त्रिकालदर्शी है, جس کی آیو ہم سے لمبی ہے، جو کال پر جیت پائے ہوئے ہے، کال جس کے ادھین ہے، وہی کال چکر کے بارے میں ستیہ بتا سکتا ہے. ہم سب تو کال کے ادھین ہیں، لیکن کال کو ادھین کرنے والا کال جئی، اکال مورت، کالوں کا کال، وہ ہے ایک پرم پتا پرماتما. تو یوگوں کا اور کلپ کا سمپورن ستیہ گیان وہ کال جئی، کال کو ادھین کرنے والا اکال مورت پرماتما پتا سنگم یوگ پر آ کر پتا شری پرجا پتا برہما کے مکھ سے ہمیں سناتے ہیں، اور آج اسی کی چرچا ہم اس ستر میں کرنے جا رہے ہیں. جیسے ہم نے چرچا کی، دن رات 24 گھنٹے کے، سال 365 دن کا، شتابدی 100 ورش کی، تو یہ جو کلپ کا چکر ہے اس کی اودھی ہے 5000 ورش. اور جب 5000 ورش کی بات کی جاتی ہے تو کئیوں کے من میں سوال آتے ہیں کہ بہن جی بس اتنا چھوٹا سا، یہ 5000 سال میں ہی پورا چکر پورا ہو جاتا ہے؟ اتہاس اتنا لاکھوں سال پرانا ہے، کوئی کوئی چیزیں لاکھوں کروڑوں سال پرانی، ایسے ایسے کئی پرکار کے پرشن من میں پیدا ہوتے ہیں. بڑا چکر ہے 5000 سال کا چکر، باقی سب چھوٹی ہیں. لیکن کیا چھوٹے والے چکروں کے بارے میں ہمارے من میں سوال اٹھے کہ دن اور رات 24 گھنٹے کے ہی کیوں ہے، سال 365 دن کا ہی کیوں ہے، شتابدی 100 سال کی کیوں ہے، کس نے بنائی، کیوں بنائی، 99 سال کی بھی تو ہو سکتی تھی، دن رات 23 گھنٹے یہ بھی تو ہو سکتے تھے، سال 360 دن کا بھی تو ہو سکتا تھا. وہاں تو ہم نے کوئی پرشن نہیں اٹھائے. تو جب چھوٹے چھوٹے چکروں کے بارے میں پرشن نہیں اٹھائے تو پھر بڑے چکر کے بارے میں پرشن کیوں؟ اور جہاں تک بڑے چکر کی بات ہے، اس کے بہت سارے پروف ہیں ہمارے پاس. سب سے پہلے اگر ہم بھارت کے ایک شاستر مہابھارت کو لیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ 5000 سال پہلے اس بھارت بھومی پر ایک مہابھاری مہابھارت یدھ ہوا تھا جس میں بھگوان نے گیتا کا گیان دیا تھا. اور مہابھارت میں لکھا ہوا ہے کہ جب گھر گھر میں مہابھارت ہو جائے تو سمجھ لینا کہ پھر سے مہابھارت کال آ گیا ہے. تو آج آپ دیکھیے گھر گھر میں مہابھارت ہے، گھر گھر میں شکونی بیٹھا ہوا ہے کپٹی، گھر گھر میں دھریتراشٹر جیسے اندھے ماتا پتا ہیں جو اپنی ہی سنتان کے کرموں کو دیکھ نہیں پاتے، جج نہیں کر پاتے، دشا نہیں دے پاتے، موہوش غلط کاموں میں بھی سپورٹ کرتے ہیں. ہر گلی محلے پہ آپ کو دریودھن مل جائے گا، ستا کا درپیوگ کرنے والا، دھن کا درپیوگ کرنے والا، تو شاسن مل جائے گا، جیون میں کوئی انوشاسن نہیں. اسی طرح سے مسلم دھرم کی پستک میں لکھا ہے کہ قیامت کا سمے ہر 5000 سال کے بعد ریپیٹ ہوتا ہے، اور اس میں بھی قیامت کے کئی چن ہیں. جب قیامت آئے گی تو سوریہ سر کے اوپر آ جائے گا، ارتھات گرمی بے تحاشا بڑھے گی. کرسچین لوگ بھی کہتے ہیں کرائسٹ سے 3000 سال پہلے سورگ تھا، بائبل میں لکھا ہوا ہے. تو کرائسٹ کو 2000 سال ہو گئے اور اس سے 3000 سال پہلے سورگ تھا، مطلب 5000 سال پہلے بھارت بھومی سورگ تھی. ویسے بھی ویگیانک شودھ میں کئی باتیں سامنے آتی ہیں. جیسے ایک شودھ میں آیا تھا کہ پانی کی آیو کیول 5000 سال ہے، وہ 5000 سال میں اپنے روپ کو اتنا پولیوٹیڈ اس کا روپ ہو جاتا ہے کہ وہ جیون دینے لائق رہتا ہی نہیں. تو 5000 سال کے بعد پانی کے رینیول کی آوشیکتا ہے. تو پانی 5 تتووں میں ایک تتو ہے. ایک تتو میں اتنا پولوشن آ جاتا ہے تو پھر وایو ہو، دھرتی ہو، آکاش ہو، سارے تتو مل کر کے اتنا پولوشن پیدا کر دیتے ہیں کہ ان کے بھی رینیول کی آوشیکتا پڑتی ہے. तो समय के इस चक्र को जानने के लिए हमारे पास एक बहुत सुंदर चीज है, जैसे कहते हैं रोज के समय को आप हाथ की घड़ी से जान सकते हैं, महीने और साल के समय को आप कैलेंडर से जान सकते हैं, लेकिन जब युगों को जानने की बात आती है तो हमारे पास, हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे पास एक बहुत सुंदर चीज है जिसको हम कहते हैं स्वास्तिका। इस स्वास्तिका मांगलिक चिन्ह है। कोई भी मंगल मुहूर्त होता है तो स्वास्तिका की स्थापना होती है, उसका चित्र बनाया जाता है। ये संस्कृत के शब्द सु अस्ति से बना है। सु माना शुभ, अस्ति माना है, अर्थात काल चक्र शुभ ही शुभ है। काल चक्र की हर घड़ी शुभ ही शुभ है। इसमें जो भी कुछ होता है वो अच्छा ही अच्छा है। और इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा, जो बीत गया वो भी अच्छा, वर्तमान काल उससे भी अच्छा, और आगे आने वाला उससे भी अच्छा। लेकिन कईयों के मन में सवाल पैदा होता है कि हमारे लिए तो समय बहुत बुरा है, हमने जीवन में किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी समय के ऐसे ऐसे बुरे रूप हमने देखे, बहुत बुरे बुरे समय को फेस करना पड़ा। उसका कारण है कि हमें काल की समझ नहीं है। काल का भी कोई ये रहस्य है। उस गुह्य रहस्य को समझने पर ही हमें पता पड़ता है कि समय का सेकंड सेकंड कल्याणकारी है। जो घटना आज हमें अकल्याणकारी लग रही है, महीने बाद जब समय का पर्दा उठता है तो वही बात हमें कल्याणकारी लगने लगती है। इस पल जो बात अकल्याणकारी है, घंटे बाद उसी में कुछ ना कुछ कल्याण नजर आने लगता है। मुझे याद है कुछ समय पहले एक सेंटर की बहन ने अपने एक भाई को, कहा उन दिनों मोबाइल कम प्रचलन में थे, और दूसरे सेवा केंद्र पर भेजा कोई मैसेज देके, क्योंकि वहां का फोन ठीक नहीं था और मैसेज जरूरी था। तो बोला, भैया आप कोई स्कूटर गाड़ी लेके ना उस दूसरे सेंटर की बहन को मैसेज दे के आओ, जल्दी में दे के आओ। अब बच्चा कॉलेज में पढ़ने वाला था, उसने कहा 12 बजे मेरी क्लास लगेगी कॉलेज में, तो उससे पहले पहले मैं जाके फटाफट आ जाऊंगा। उसने अपने एक दोस्त को साथ में लिया, सड़क पे जाके खड़ा हो गया। कोई भी ट्रक मिलेगा, बस मिलेगी, कोई भी यातायात का साधन मिलेगा तो मैं चला जाऊंगा। तो एक ट्रक आया, उसने हाथ दिया, ट्रक वाला रुक गया और इशारा किया कि पीछे से चढ़ जाओ। और जैसे ही वो पीछे से चढ़ने लगे तो उसने तेज गति से ट्रक दौड़ा दिया। बेचारी गिरते गिरते बचे दोनों। आधा किलोमीटर दूर जाकर के ट्रक वाले ने ट्रक रोक दिया और फिर बुलाया, तो ये दौड़े, सोचा ऐसे ही किसी कारण से ट्रक चला दिया होगा। ये दौड़े और जैसे ही चढ़ने लगे उसने फिर चला दिया। अब वो लगभग 100 मीटर दूरी पे जाके खड़ा हो गया और फिर बुलाया, और इनको तो बहुत अर्जेंट काम था और कोई दिख नहीं रहा था साधन, तो ये फिर दौड़े। जब उसने तीसरी बार ऐसे ही किया तो उन्होंने कहा, नहीं ये तो हमें खेल खिला रहा है, हम नहीं बैठेंगे इसके ट्रक में। तो दोनों के मन में आया, जैसा कि ऐसे समय पे आ जाता है, कैसा व्यक्ति है। बहुत कुछ मन में आया, नेगेटिव थिंकिंग आई उस व्यक्ति के बारे में। तो ट्रक तो चला गया, उसके बाद बस आई, 15 मिनट के बाद ये बस में बैठ गए। अभी बस ने आधी दूरी 10 किलोमीटर की दूरी पार की थी कि सड़क के ऊपर बहुत भीड़ थी और रास्ता जाम किया हुआ था। इन्होंने कहा देखा पहले ट्रक वाले ने ऐसी किया, अब ये जाम मिल गए, हम कैसे पहुंचेंगे। तो सवारियां बस से उतर के पता करने लगी जाम क्यों लगा हुआ है, तो थोड़ा भीड़ के अंदर जाके देखा तो ट्रक उल्टा पड़ा हुआ था, उलट गया था वही वाला ट्रक, और आसपास के लोग झूम गए थे। ड्राइवर और कंडक्टर जो दो बैठे थे दोनों जा चुके थे ऊपर, और लोग अपनी तरफ से सेवा में लगे हुए थे, कुछ देख रहे थे कुछ काम में लगे हुए थे। तो उन दोनों भाइयों ने कहा ये तो भाई ट्रक है, और लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, दोनों ने बहुत शराब पी रखी थी। तो कहा देखा कितना अच्छा हुआ अपन नहीं बैठे, तो भगवान ने अपने को बचा लिया, बैठने नहीं दिया इसमें। अब आधे घंटे पहले वो दोनों क्या नजर आ रहे थे और ये घटना कैसी लग रही थी, देखो कैसी परिस्थिति है, कोई वाहन नहीं मिल रहा है, एक मिला वो भी कैसा निकला, लेकिन अब मन में क्या आ रहा है, अच्छा हुआ हमारा समय बहुत अच्छा था। पहले क्या लग रहा था, समय बड़ा खराब है, कोई हमें सहयोग नहीं दे रहा। अब क्या लग रहा है, हमारे ग्रह अच्छे थे, हमारा समय अच्छा था, अच्छा हुआ इसने हमको नहीं बिठाया, नहीं तो इसके साथ हमारी भी वही गति होती। तो समय का पर्दा खुला तो पता पड़ा घटना कल्याणकारी थी, पर्दे में थी घटना तो अकल्याण नजर आ रहा था। तो हम भी जब समय को दोष देते हैं तो हमें पता नहीं होता कि इसके पीछे हमारे लिए कौन सा रिवार्ड छपा है, हमारे लिए कौन सा बून छिपा हुआ है, कौन सा वरदान छिपा हुआ है। तो परमात्मा पिता ने इस कल्याणकारी सृष्टि चक्र की जो नॉलेज दी है उसकी शुरुआत और अंत नहीं है। किसी भी चक्र का शुरुआत और अंत तो होता ही नहीं। अब अपन कब कहेंगे दिन कहां से शुरू हुआ, अगर अपन कहते हैं भाई सुबह 4 बजे दिन शुरू होता है तो उससे पहले 3 भी तो बजे हुए थे, चक्र की शुरुआत तो होती ही नहीं। लेकिन फिर भी उसे जानने के लिए अपन एक शुरुआत का पॉइंट ले लेते हैं। तो स्वास्तिका का चित्र इसमें देख रही हैं, इसमें आपके राइट हैंड साइड स्वास्तिका की ऊपर की तरफ जो भुजा है, कहते हैं राइट हैंड शुभ का प्रतीक होता है, तो एक तो राइट हैंड साइड और दूसरा फिर अपर साइड, दोनों ही शुभ है, वहां से हम इसकी शुरुआत करते हैं। ये है स्वास्तिका की वो पहली भुजा, स्वास्तिका में जो 4 बनाए हैं कोष्ठक, उसमें से पहला कोष्ठक, ये सृष्टि की शुरुआत है। मान लो ये शुरुआत है, जैसे मैथ्स में कहते हैं मान लो राशि 100 रुपए और उसके बाद हमारा वो सम सोल्व हो जाता है। अब इसमें हम देख रहे हैं श्री राधा और श्री कृष्ण, दूसरा हम देख रहे हैं इसका गोल्डन कलर, तो ये गोल्डन एज है, स्वर्ण युग है। भारत उस समय सोने की चिड़िया थी, सोने के महल थे, सोने के बर्तन थे, सोने के तारों वाले कपड़े थे, अर्थात भारत स्वर्ण जड़ित चीजों वाला था, जैसे पत्थरों के ढेर हैं ऐसे सोने के ढेर थे, हीरे मोतियों के ढेर थे। इसलिए देवी देवताओं को कितना गहना पहने दिखाते, मेल और फीमेल, पहले नाम श्री राधा का आता है फिर श्री कृष्ण का आता है। एक तो सोने की दुनिया थी, धन दौलत समृद्धि से भरपूर थी, गरीबी भूखमरी का तो नामो निशान नहीं था, जरूरत से अधिक सब कुछ था, प्रकृति दोनों हाथों से लुटाती थी, दासी थी, बड़े बड़े फल थे, खुशबूदार जल था, नारी का नाम पहले आता था, पहले लक्ष्मी, फिर नारायण, पहले राधा, फिर श्री कृष्ण, अर्थात नारी प्रधान युग था, मातृ सम्मान का युग था। यत्र पूज्यन्ते नार्यस्तु रमन्ते तत्र देवता, नारी सम्मान का युग था, इसलिए हर नर देवता था, हर नारी लक्ष्मी थी। तीसरा, सारे युगों का टाइम पीरियड इक्वल है, जैसे दिन के 8 पहर हैं तो सबका टाइम पीरियड इक्वल है। मनुष्य के जीवन को 4 भागों में बांटा गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, उसके भी टाइम पीरियड बराबर। तो इसी तरह से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जब 5000 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो एक युग का टाइम पीरियड 1250 साल आता है। युग था 1250 साल का। अब युग 1250 साल का है और उसमें एक व्यक्ति की आयु से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आयु निकलेगी। तो यहां पर एक देव आत्मा 8 पुनर्जन्म लेती है। तो 8 को जब हम 1250 से भाग करते हैं तो लगभग आयु 150 साल निकलती है, एवरेज आयु। तो आयु 150 साल है। और ये सूर्यवंश, सूर्यवंशी, सत्यनारायण या सूर्य नारायण कहा जाता है, सूर्यवंशी राजाओं का युग है। सूर्य की कलाएं कम अधिक नहीं होती, वो निरंतर प्रकाश देता है। तो इस युग में भी निरंतर प्रकाश, निरंतर सद्गुणों का प्रकाश, पवित्रता का प्रकाश, समृद्धि का प्रकाश, सुख, शांति, पवित्रता 100%, ऐसा ये युग। श्री राधा ही बड़े होके श्री लक्ष्मी पद पाती हैं और श्री कृष्ण बड़े होके श्री नारायण पद पाते हैं। जैसे चावल का जो हंडा होता है उसमें से एक चावल निकाल के अपन देख लेते हैं तो पता पड़ जाता है बाकी चावल कैसे, सारे नहीं देखने पड़ते। तो एक राधा को देख के पता पड़ता है कि वहां की बालिकाएं कैसी थी, एक श्री कृष्ण को देख के पता पड़ता है कि वहां के बालक कैसे थे, एक श्री लक्ष्मी को देख के पता पड़ता है कि वहां की नारियां कैसी थी, एक श्री नारायण को देख के पता पड़ता है कि वहां के नर कैसे थे। वो देव युग था, देवी और देवताओं का युग था। आज भी हमारे घर में शादी के बाद फीमेल आती है तो हम उसको कहते हैं लक्ष्मी आई। तो वहां शादी के बाद नाम बदल जाता था, नर नारी दोनों का नाम बदलता था। भारत में केवल नारी का बदलता है, ससुराल का गोत्र, और ससुराल में जाके कहीं कहीं तो नाम भी बदल जाता है, गोत्र तो बदल ही जाता है। यहां क्यों नहीं बदलता अभी, उसके कई कारण है। क्योंकि बहुत करके बाल्यकाल से पुरुषों के नाम प्रॉपर्टी हो जाती है, फिर उसमें नाम चेंज करवाना बहुत मुश्किल होता है। द्वापर से पलट गया, उस पर अभी हम आएंगे। नारी प्रधान युग धीरे धीरे पुरुष प्रधान युग बन गया, तो आज का युग पुरुष प्रधान है, इसलिए पुरुषों के नाम नहीं बदलते, केवल महिलाओं के बदलते हैं। लेकिन वहां समानता थी तो दोनों के नाम बदलते थे। यहां 16 कलाएं थी, हर एक आत्मा में 16 कला का अर्थ क्या है, जीवन जीने की उदात्त शैली, जिसमें हर कर्म कला युक्त है। देखना भी कला है, सुनना भी कला है, बोलना भी कला है, चलना भी कला है। और यही कारण है कि इन देवी देवताओं के मंदिरों में हम दर्शन करने जाते, इनके हर कर्म के दर्शन होते, इनके उठने के भी दर्शन है, सोने के भी दर्शन है, खेलने के भी दर्शन है, खाने के भी दर्शन है। तो हर कर्म कलायुक्त था, तो उसको हमने कहा 16 कला संपूर्ण। 16 शब्द परफेक्शन का प्रतीक है, कोई सच्ची बात होती है तो कहते हैं 16 आने सच्ची, और रुपए में भी 16 आने होते तो वो पूरा रुपया बन जाता है। तो इसी तरह से 16 का नाम आना एक संपूर्ण जीवन, बेदाग जीवन, निर्विकारी जीवन, सर्व गुण और शक्तियों से संपन्न जीवन। फिर कहते हैं गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, भगवान ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया। तो सतयुगी दुनिया में परमात्मा पिता ने देवी देवताओं को अपने जैसे गुण और शक्तियों से सज्जित करके भेजा। ये पहला युग है। उसके बाद स्वास्तिका की भुजा है तो राइट हैंड साइड, लेकिन नीचे की ओर आ गई है। ये दूसरा युग है। इसमें आप देख रहे हैं श्री सीता और श्री राम, और थोड़ा कलर चेंज हो गया है, सिल्वर कलर हो गया है। सूर्य वंश के बाद चंद्रवंशी राजाओं का राज्य शुरू हुआ, इसलिए कहते हैं रामचंद्र अर्थात चंद्रवंशी। यहां भी पहले श्री सीता फिर श्री राम, इसलिए नाम रखते हैं तो सीताराम रखते हैं, कोई राम सीता नहीं रखते। और यहां ये दो कला कम 14 कला हो गई, लेकिन सुख समृद्धि सतयुग की तरह ही है, प्रकृति दासी है, घी दूध की नदियां बहती हैं, गाय शेरे घाट पानी पीते हैं, पशु प्राणी भी प्रेम से रहते हैं। यहाँ के लिए ही गायन है कि भारत में राम राज्य चाहिए। बापू गांधी क्या कहते थे, राम राज्य चाहिए। ऐसा राज्य जिसमें राजा भी मर्यादा पुरुषोत्तम है और प्रजा भी मर्यादा पुरुषोत्तम है, जैसा राजा वैसी प्रजा, प्रकृति में भी मर्यादाएं हैं, पांचों तत्व मर्यादाओं के अकॉर्डिंग चलती हैं। ऊपर में 16 कला थी, यहां 14 कला है। ऊपर वाला कुल देव कुल था, ये क्षत्रिय कुल है। सतयुग के शुरू में जनसंख्या 9 लाख, अंत में 2 करोड़, और त्रेता का अंत आते आते जनसंख्या 33 करोड़ हो जाती है। वो 33 करोड़ देवता हैं, देवों के वंशज हैं, दैवी वंशावली है, हर कोई उसमें देवता है। देवता अर्थात देने वाला, देवता अर्थात निर्विकार वैष्णव, जिसमें विष है ही नहीं, वो वैष्णव है, विष्णु की वंशावली। तो ये 33 करोड़ देवी देवता 2 युगों तक रहे। वैसे भी इस सृष्टि चक्र जो है इसका आधा भाग जिसमें 33 करोड़ देवी देवता हुए वो ब्रह्मा का दिन कहलाता है, शुरुआती हिस्सा ब्रह्मा का दिन। एक और हमारे यहां कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं व्यास विरुद्ध, ये पूरा का पूरा एक व्यास है। इसका इधर जो कुछ है इधर इसके ऑपोजिट है। तो यहां जो कुछ है वो इधर नहीं है। ये दिन का पीरियड है, ये रात्रि का पीरियड है। दिन और रात में तो कितना अंतर रहता है, तो दिन में जो कुछ था रात्रि में वो कुछ भी नहीं रहेगा, बदल जाएगा। यहां तक 33 करोड़ देवी देवता थे, सुख शांति संपत्ति थी, दैवी सभ्यता संसार की सर्वोच्च सभ्यता थी, लेकिन समय परिवर्तनशील है, सब कुछ बदल जाता है। तो अवश्य इस चक्र में भी एक भारी परिवर्तन यहां आता है। और स्वास्तिका की भुजा लेफ्ट हैंड साइड टर्न कर जाती है, लेफ्ट अर्थात वाम, जिसके लिए भारत के शास्त्रों में लिखा हुआ है कि देवता वाम मार्ग में चले गए। ये वाम मार्ग में प्रस्थान हो रहा है, इसलिए ये भुजा वाम मार्गीय हो गई। और जब वाम मार्ग की शुरुआत होती है तो प्रकृति बड़ी क्रोधित होती है, और प्रकृति एक भयंकर अपहिवल उथल पुथल प्रकट करती है, जिसमें ये पूरी की पूरी दैवी सभ्यता जमीन दोज हो जाती है। इसलिए गायन है कि सोने की द्वारिका पानी में चली गई। दैवी सभ्यता भी नष्ट हो गई। वो महल, वो सुंदर सुंदर प्रकृति की कारीगरी, वो सब की सब विनष्ट हो गई, क्योंकि देवताओं के वाम मार्गीय कर्म प्रकृति को क्रोधित कर देते हैं। और यहां से मौसम बदलने लगा, यहां सदा बसंत बहार थी, यहां ऋतुएं बनने लगी, यहां प्रकृति दाता थी, लेकिन यहां प्रकृति मनुष्य को पहले जितना नहीं देती, देने में कमी करने लगी, अगेंस्ट हो गई। कारण क्या, प्रकृति अगेंस्ट क्यों हुई? प्रकृति मनुष्य के पीछे चलती है, जैसा मनुष्य वैसी ही नेचर अर्थात पांचों तत्व। तो यहां आने के बाद एक चीज प्रकट हो गई मनुष्य में, जिसका नाम है देह का अभिमान। वो चीज यहां नहीं थी, यहां देह अभिमान नहीं था, आत्मिक दृष्टि थी, नर नारी की एक दो के प्रति शुभ दृष्टि, शुद्ध दृष्टि, आत्मिक दृष्टि, देह से परे की दृष्टि थी। और उस शुद्ध दृष्टि का परिणाम था कि वह संतान योग बल से जन्मी, 33 करोड़ देवी देवताओं का जन्म योग बल से हुआ। योग बल, आत्मिक बल, वैचारिक बल, जिसके लिए भारत के शास्त्रों में लिखा हुआ है कि देवी देवता उद्धव रेता थे। और इसीलिए दिखाते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता था तो उसके चेहरे के चारों ओर लाइट का क्राउन होता था। श्री कृष्ण जी जन्मे तो पूरे महल में रोशनी हो गई, श्री राम जी जन्मे तो पूरे महल में रोशनी हो गई, इतना तेज बच्चे के चेहरे पे होता था। तो वो तेज उस संकल्प बल का, उस आत्मिक बल का था। मानसिक संतति थी वो, इसलिए वो तेजस्वी थी। लेकिन यहां मानसिक संतति का रिवाज बदल गया, देह अभिमान आ गया, देह दृष्टि बन गई, एक दो की देह को देखा जाने लगा। और जब हम देह को देखते हैं तो भेद पैदा होता है, कई प्रकार का भेद पैदा होता है। मेल फीमेल का तो भेद पैदा होता ही है, इसके अलावा भी कोई लंबा है, कोई ठीगा है, कोई काला है, कोई गोरा है, जाति का भेद, धर्म का भेद, कर्म का भेद, आयु का भेद, वर्ण का भेद, कई प्रकार के भेद पैदा हो गए। और जब वाम मार्गीय सृष्टि में भेद पैदा हो गई तो मनुष्य के जीवन में अभाव भी आने लगे, पहले जैसी स्मृति नहीं रही। इतिहास का एक गहरा राज हमें यहां समझ में आता है। ये 2500 साल का पीरियड अटल अखंड स्वराज्य चलता है, किसी का आक्रमण नहीं, कोई किसी की राजाई नहीं छीनता, कोई किसी को कुदृष्टि से नहीं देखता अर्थात किसी को नजर नहीं लगाता। जो राजा गद्दी पर बैठ जाता है अपना टाइम पूरा करके, फिर उसकी संतति गद्दी पर बैठती है, न प्रॉपर्टी का झगड़ा है, न सिंहासन का झगड़ा है। लेकिन परमात्मा पिता ने बताया जब देवता वाममार्गी हो जाते, देह अभिमान आ जाता है, और देह अभिमान से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पैदा होते हैं, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश जो संतान पैदा होती है वो अनलिमिटेड संतान पैदा होती है। जैसे यहां तो एक बच्चा और एक बच्ची, दो ही संतान होती थी, प्रॉपर्टी का बंटवारा ही नहीं हुआ, भाई भाई के बीच झगड़े की बात ही नहीं थी। लेकिन जब वाम मार्ग में गए तो सीमा से परे संतान आई, किसी राजा के 10 राजकुमार हैं, किसी राजा के 20 राजकुमार हैं। अब राजा क्या करेगा? और इस युग में एक पत्नी व्रत था, अर्थात 33 करोड़ देवी देवताओं में कोई भी बहुपत्नी वाला नहीं था। यहां आकर के बहु पत्नी रिवाज हुआ, तो एक राजा की अगर 5 रानियां हैं, 20 पुत्र राजकुमार हैं, तो हर एक रानी चाहती है कि मेरे वाले पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया जाए ताकि मैं राजमाता बनूं। तो रानियों के बीच में भी आपसी एकता नहीं रही और वो जो 20 राजकुमार थे उनके बीच में भी आपसी एकता नहीं रही। जैसे इतिहास बताता है कि राजा अशोक अपने 100 भाइयों को मार के गद्दी पर बैठा। तो गद्दी पाने के लिए भाई ने भाई के ऊपर अमानवीयता दिखाई। और कई बार ऐसा भी हुआ कि राजा ने सोचा कि ये राजकुमार आपस में ना लड़े तो उसने अपने राज्य को ही 4 भागों में बांट दिया। उत्तर की तरफ एक राजकुमार राजाई कर ले, पूर्व की तरफ एक, पश्चिम की तरफ एक, दक्षिण की तरफ। तो जो एक राजा का राज्य था अगली पीढ़ी में वो 4 राजा बन गए, तो अटल अखंड राज्य नहीं रहा। और अगली पीढ़ी आते आते उन 4 राज्यों के भी हो सकता है 8 और 12 हो गए। तो परिणाम क्या हुआ कि ये भारत भूमि जिस पर देवी देवताओं का एक छत्र राज्य होता था छोटे छोटे राजाई टुकड़ों में बट गई। जब भारत आजाद हुआ तो 500 रियासतें थी। आप समझ सकते हैं एक रियासत की कितनी प्रजा रही होगी। टोटल भारत की आबादी उस समय 33 करोड़ के लगभग थी। तो 500 रियासतों में एक के हिस्से कितनी आबादी आई होगी आप हिसाब निकाल सकते हैं। एक के हिस्से 1 करोड़ भी नहीं आएगी। तो इतने छोटे छोटे राजा बन गए। और फिर चूंकि काम क्रोध लोभ अहंकार आए तो जो लोभ है वो हावी हुआ तो बलशाली राजा ने कमजोर के ऊपर आक्रमण करके उसके राज्य को अपने में मिला लिया। युद्धों की शुरुआत हुई। यहां कोई युद्ध नहीं हुआ और यहां भी आधे पीरियड तक, द्वापर के आधे पीरियड तक कोई युद्ध नहीं हुआ। अर्थात लगभग 3000 साल, भगवान वाच लगभग 3000 साल कोई युद्ध नहीं होता, क्योंकि दैवी सभ्यता का असर 500 साल तक तो चला, लेकिन उसके बाद डिसयूनिटी अर्थात अनेकता इतनी अधिक बढ़ गई कि भाई भाई पर आक्रमण करने लगा। और उसी काल में धर्म पिताओं का सृष्टि पर आगमन हुआ। कहते हैं परिस्थिति पुरुष को जन्म देती है। तो यहां तो कोई परिस्थिति थी नहीं है, तो देवी देवता थे, खुद ही देवी देवता थे। लेकिन जब यहां वाम मार्ग में चले गए, आत्मा कमजोर हो गई, भगवान को पुकारने लगे, पूजा भक्ति शुरू हो गई, यज्ञ भी शुरू हो गई, तो टाइम टू टाइम संसार को मार्ग दिखाने के लिए महान आत्माओं का आगमन होने लगा। उसमें सबसे पहले इब्राहिम की आत्मा धरती पर उतरी। इब्राहिम ने लोगों को परमात्मा एक है ये संदेश दिया। इसने इस्लाम धर्म की स्थापना की, लेकिन बहुत सिस्टेमेटिक नहीं कर पाया, बीच में इसकी आयु पूरी हो गई। उसके कुछ समय के बाद महात्मा बुद्ध का आगमन हुआ। लगभग 2250 साल पहले। और महात्मा बुद्ध ने लोगों को करुणा का, अहिंसा का उपदेश दिया, किसी को दुख मत दो, सब पर दया करो। उसका असर कुछ वर्षों तक चला। उसके बाद क्राइस्ट की आत्मा का आगमन हुआ। क्राइस्ट ने लोगों को प्रेम का संदेश दिया, अपने पड़ोसी को प्रेम करो तो परमात्मा तुम्हारे प्रेम को स्वीकार करेगा, प्रेम सिखाया। तो इस प्रकार द्वापर अर्थात दोपुर हो गए, धर्म अलग हो गया, कर्म अलग हो गया, द्वैतवाद शुरू हो गया, अनेक धर्म पिता आए, अनेक ऋषि मुनि आए जिन्होंने वेदों शास्त्रों की रचना की, और भक्ति पूजा मंदिर सब शुरू हो गए। यहाँ तो घर ही मंदिर था, लेकिन यहाँ घर अलग और मंदिर अलग हो गए, मठ अलग हो गए। इस प्रकार से द्वापर युग के 1250 वर्ष भी पूरे हो गए। इसका कलर आप तांबे जैसा देख रही हैं, ये ताम्र युग है, वो स्वर्णिम युग था, ये चांदी युग था, ये तांबा युग है। वह 16 कला थी, यहाँ 14 कला और यहाँ केवल 8 कला। युग का अंत आते आते मनुष्य में केवल 8 कलाएं रह गई, हाफ प्योरिटी रह गई। द्वापर के बाद समय आगे बढ़ा और आगे बढ़ते बढ़ते कलयुग आ गया और इसका कलर काला दिखाया है, अर्थात बुराई की अति, विकारों की अति, पापाचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार की अति। जैसे अपन अमावस्या कहते हैं, पूर्णमासी से शुरुआत हुई और चलते चलते बिल्कुल अमावस्या आ गई। वास्तव में युग अपने आप में कुछ नहीं है, जैसे मनुष्य होते हैं वैसा ही युग का नाम पड़ जाता है। तो 8 कला से घटते घटते कलयुग में आते व्यक्ति 0 कला हो गया, इसलिए कहते कला काया चट हो गई। मानव में जो गुणों की कलाएं थी, शक्तियों की कलाएं थी, श्रेष्ठ कर्म की कलाएं थी, वो खत्म हो गई, कलाहीन हो गया, गुणहीन हो गया, शक्तिहीन हो गया। और यहाँ कोई बड़ा धर्म पिता भी नहीं आया, सिर्फ गुरु नानक देव जी आते हैं, उसके बाद सारे विश्व को एकता के सूत्र में बांध सके ऐसा कोई धर्म पिता कलयुग में अवतरित नहीं हुआ। छोटे छोटे गुरु अपने अपने मठ पंथ बना के बैठे हुए हैं, उनमें भी आपस में एकता नहीं है, तो धर्म के नाम पर भी डिसयूनिटी। राज्य में तो यूनिटी है ही नहीं, राजतंत्र खत्म होकर के लास्ट लास्ट में प्रजातंत्र आ गए। तो अब हम सृष्टि चक्र के उस पीरियड में है जहां घोर अंधकार है। इस घोर अंधकार को दूर कौन करे? थोड़ा थोड़ा अंधकार शुरू हुआ तो धर्म पिता आए, लेकिन जब एकदम घना अंधकार हो गया तो किसी व्यक्ति के वश की बात ही नहीं, तो क्या होगा? जब छोटी मोटी ट्रीटमेंट देनी होती है तो कोई कंपाउंडर, कोई नर्स दे देती है, लेकिन पूरा ही ऑपरेट करना पड़े तो बड़े सर्जन की जरूरत पड़ती है। छोटे मोटे केस को तो लोकल कोर्ट हैंडल कर लेती है, लेकिन बड़ा केस हो तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है। तो सृष्टि का केस इतना बिगड़ गया कि किसी महात्मा, किसी देव आत्मा, किसी पुण्य आत्मा के वश की बात ही नहीं रही, अब तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला केस हो गया। तो यहां आत्माएं पुकारती हैं, हे प्रभु आओ, दुख हरो, हम बहुत कष्ट में हैं, इस संसार में बहुत कष्ट है, पाओ। और आत्माओं की पुकार सुन करके, पुकार तो यहां से शुरू हो गई थी, लेकिन पुकार की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि परमात्मा पिता का भी सिंहासन हिल गए। जैसे कहते हैं फायर ब्रिगेड कब आएगी? जब आग लगेगी। डॉक्टर कब आएगा? जब कोई बीमार होगा। वकील कब आएगा? जब कोई झगड़ा होगा। तो परमात्मा भी कब आएगा? सुख में नहीं आएगा। यहां भी सुख है, यहां भी सुख है, यहां भी सुख है, लेकिन दुख की अति यहां होती है। तो वो सुख करता है तो दुख के समय आना शोभता है, वो सदगति दाता है तो दुर्गति के समय आना शोभता है, वो कल्याणकारी है तो अकल्याण के समय आना शोभता है, वो मार्ग दिखाने वाला है तो लोग जब मार्ग भटक जाएंगे तब आना शोभता है। तो परमात्मा पिता, ज्ञान सूर्य परमात्मा, जिसके लिए कहा गया है ज्ञान सूर्य प्रगटा, ज्ञान अंधेर विनाश, वो ज्ञान सूर्य परमात्मा कलयुग के अंत में अवतरित होते हैं। अति अमावस्या में ही अति रोशनी हो जाती है, लेकिन उनका आगमन गुप्त रूप में होता है। परमात्मा शब्द में ही परमात्मा का परिचय छिपा हुआ है। परम माना सुप्रीम, आत्मा माना आत्मा। वो सुप्रीम सोल है, उनको बॉडी नहीं, वो एक तेजस्वी प्रकाश है, देदीप्यमान सितारा है। तो वो धरती पर आए तो उसे देह का आधार चाहिए। परकाया प्रवेश, प्रकृति को अधीन करके परमात्मा आते हैं। तीन प्रकार के जन्म होते हैं। एक जन्म है मनुष्यों का, वो तो हम रोज ही देखते हैं, उसके बारे में हम सब जानते हैं। दूसरा जन्म है देवी देवताओं का, उसको हम दिव्य जन्म कहते हैं, जो योग बल से होता है। मानव का जन्म पशु बल से होता है, देवताओं का जन्म योग बल से होता है। और परमात्मा का जन्म नहीं होता, अवतरण होता है। अवतरण का मतलब बने बनाए शरीर में अवतरित हो गए। शरीर पहले बच्चा बने, फिर बड़ा बने, फिर जवान बने, बने बनाए शरीर में अवतरित हो गए, उसके ललाट में, भ्रकुटी में आके बैठ गए और उसके मुख से ज्ञान दिया, और फिर जिसमें अवतरित हुए थे चले गए, फिर आ गए, फिर चले गए। पर काया प्रवेश का अर्थ है काया का बंधन नहीं है। जब चाहो काया में प्रवेश करो, जब चाहे चले जाओ। हम सब तो इस काया से बंधे हुए, एक बार निकल गए तो दोबारा आने के लिए जगह नहीं, राख ही मिलेगी। बंधे हुए हम इससे, या तो इसमें रहो या तो फाइनल निकलो, आने जाने का खेल नहीं कर सकता मनुष्य। लेकिन परमात्मा बंधता नहीं है, वो आने जाने का खेल कर सकता है। तो वो भाग्यशाली काया कौन सी है जिसमें वो प्रवेश करते हैं, आने जाने का खेल खेलते, आने जाने का क्रम चलता रहता है। वो भाग्यशाली आत्मा वही है जो यहाँ श्री नारायण की आत्मा थी, और युगों का चक्र लगाते 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 अंत में साधारण दादा लेखराज के नाम से हीरे जवाहरात के एक बहुत बड़े व्यापारी थे, अंतिम जन्म में साधारण मानव बन गई थी नारायण की आत्मा भी। उनकी काया में वो सुप्रीम सूल ललाट में प्रवेश करते हैं और उनको नाम देते हैं पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा जिसमें ब्रह्म लोक का रहने वाला आया, ब्रह्म आ जिसमें ब्रह्म लोक में रहने वाला आ गया, वो हो गया ब्रह्मा। तो नाम मिला प्रजापिता, संपूर्ण सृष्टि की आत्माओं का पिता प्रजापिता। उनके द्वारा परमात्मा ज्ञान देते हैं, और जैसे सूर्य के आते ही समय बदल जाता है, परमात्मा के अवतरित होते युग बदल गया। वैसे तो युग को बदलने में 1250 साल लगे, लेकिन परमात्मा पिता सुप्रीम पावर सुप्रीम अथॉरिटी आई, युग बदल गया। कलयुग में ही एक नए युग का उदय हो गया जिसको नाम दिया गया पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषों में उत्तम बनाने वाला युग, देवी देवता पुरुषों में उत्तम है, पुनः पुरुष को उत्तम बनाने वाला। पुरुष है आत्मा, नर नारी की बात नहीं है, आत्माओं को उत्तम बनाने वाला युग संगम युग प्रारंभ हो गया। परमात्मा पिता पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ज्ञान देते हैं, और उस ज्ञान को सुन करके आत्माएं पुरुषोत्तम बनती जाती हैं, नर श्री नारायण जैसी और नारी श्री लक्ष्मी जैसी। जो आत्माएं ज्ञान लेती हैं केवल वही पुरुषोत्तम बनती, बाकी जो आत्माएं कहती हम तो कलयुग की काली जिंदगी ही व्यतीत करेंगी, हम नहीं बदलेंगी। शुरुआत में हमने कहा था कि समय मनुष्य से बदलने की डिमांड करता है, बदल जाओ, लेकिन समय के इशारे को नहीं समझते और नहीं बदलते तो उनका अंत बड़ा दर्दनाक होता है। तो जो युग परिवर्तन की वेला को पहचान लेते हैं, अपने को बदल लेते हैं, श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ चालू कर देते हैं, उनका वर्तमान और भविष्य उज्जवल हो जाता है, उनके जीवन की बुराइयां निकल जाती है, आत्मा उज्जवल बन जाती है और इसके तुरंत बाद आने वाले सतयुग में वो देवी देवता पद को प्राप्त करती है। लेकिन जो समय के इशारे को नहीं समझते, अपनी जीवन शैली को पुराने धर्रे पे ही चलाते हैं, उसी अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार के बीच अपनी नैया को खेते रहते हैं, तो उनके लिए यहाँ जो भारी परिवर्तन हो रहा है वो दर्दनाक सिद्ध होगा। किसी के लिए ये परिवर्तन वरदान बन गया और किसी के लिए ये परिवर्तन दर्दनाक बन गया, क्योंकि उन्होंने युग परिवर्तन के इशारे को कैच नहीं किया। तो दो प्रकार की आत्माएं हो गई। कुछ आत्माएं अपने आप को संगम युगी समझ रही हैं और पढ़ाई में लगी हैं, परमात्मा की शिक्षाओं को धारण कर रही हैं, और कुछ समय के इशारे को ना समझ के अभी भी अपने को कलयुगवासी समझती हैं और कहती हैं कि खाओ पियो मौज करो, कलयुग लाखों साल चलेगा। लेकिन खाओ पियो मौज नहीं होती है, असली मौज परमात्मा के साथ होती है। जो बच्चा माँ बाप की गोद में बैठ के जो मौज करता है वो अलग है, और जो बच्चा मेहनत से कमा करके मौज करता है वो अलग है। तो मौज करो लेकिन परमात्मा की उंगली पकड़कर उसकी गोद में बैठकर। संगम युग मौजों का युग है, जिसको हमने कहा तू मात पिता हम बालक तेरे, उस परमात्मा पिता से मातृत्व और पितृत्व के अनुभव का युग, सर्व संबंधों के अनुभव का युग। ये एक ही छोटा सा युग है जिसमें कुछ पीरियड कलयुग का और कुछ पीरियड सतयुग का है। अबाउट लगभग आप माने तो 100 साल लगभग। तो संगम युग की शुरुआत 1936 में हुई, तो आप देखिए आज हम लगभग 86 साल संगम युग के पूरे कर चुके हैं, और इस दौरान लाखों आत्माएं पुरुषोत्तम बन रही हैं, कुछ बन करके संपूर्णता को पा चुकी हैं और कुछ की ये पढ़ाई चालू है। बैच होते हैं ना भाई, विद्यालय से कितने डिग्री लेकर के निकल गए, तो बहुत तो डिग्री लेकर के निकल गए और बहुत डिग्री लेने में लगे हुए हैं। हम सबको भी समय पुकार रहा है, जागो, अंदर की आंखें खोलो, धरती पे अवतरित हुए परमात्मा को पहचानो, क्योंकि परमात्मा इन चमड़े की आंखों से दिखने वाली चीज नहीं है, वो तो मेटाफिजिकल है, और मेटाफिजिकल चीज को अपन फिजिकल आंखों से नहीं देख सकते। भीतर का नेत्र जब ज्ञान के द्वारा खुलता है तब हमें पता पड़ता है कि हाँ हमारा पिता कैसे अपना कर्तव्य कर रहा है। भगवान 3 मुख्य बातें हमें सिखाते हैं, ऐसे तो ज्ञान का विस्तार बहुत है लेकिन उस विस्तार को हम 3 शब्दों में जानेंगे। पहला शब्द है स्वयं, दूसरा शब्द है समय और तीसरा शब्द है संयम। स्वयं अर्थात खुद को जानो, भगवान कहते हैं बच्चे खुद को जानो। आप तो पार्टधारी हो, यहां से पार्ट बजाना शुरू किया, बजाते 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 यहां तक आ गए, एक शरीर छोड़ा फिर दूसरा छोड़ा तीसरा छोड़ा, तो ये हमारा अंतिम चोला है। जैसे नाटक में पार्टधारी कितने ड्रेस पहनता है, शरीर कपड़ा है, लेना और छोड़ना चलता रहता है। तो मैं इस नाटक का पार्टधारी हूं, स्वयं को जानो, समय को पहचानो। ये संगम युग चल रहा है, कलयुग बीत गया, सतयुग आने वाला है, और तीसरा संयम को जीवन में धारण करो। संयम, नियम और संयम मानव जीवन का श्रृंगार है। संयम अर्थात सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। दुर्घटनाएं कब घटती हैं? जब ड्राइवर का गाड़ी पर से नियंत्रण खत्म हो जाता है। जब आत्मा का शरीर और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहता है तो दुर्घटनाएं घटती हैं। क्राइम क्या है, दुर्घटना है, अपराध क्या है, दुर्घटना है। अपराधी का अपनी शरीर और इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं रहा, दुर्घटना हो गई। आंख से बुरा देख लिया, दुर्घटना एक क्राइम बन गया। मुख से गलत बोल दिया, क्राइम बन गया। हाथों से गलत कर लिया, अगर नियंत्रण होता तो वो अपने हाथों को कंट्रोल में रखता, गलत नहीं करने देता। लेकिन ड्राइवर का रेस तो पावरफुल है, ब्रेक पावरफुल नहीं है। तो ब्रेक लगाना सीखो, संयम अर्थात ब्रेक, रोको। मन चलायमान होगा, तेज दौड़ेगा, लेकिन उसको रोको। कभी व्यक्ति पे आकर्षित होगा, कभी वस्तु पे आकर्षित होगा, खाने की चीजों पे आकर्षित होगा, किसी के धन दौलत पे आकर्षित होगा। उसको ब्रेक लगाओ, रोको, और उसको संयमित रखो, उसको त्याग तपस्या की ओर मोड़ दो। लेना नहीं देना है। तो परमात्मा आके हमें संयम सिखाते हैं। अपने को जीतो, दुनिया को जीत लोगे। अपने ऊपर आधिपत्य करो, दुनिया पर आधिपत्य हो जाएगा। मन जीते जगत जीत, जो इंद्रियों का राजा है वही विश्व का राजा है। तो अगर हमने इन तीन शब्दों को पक्का कर लिया तो समझो हमने समय की मांग पूरी कर दी, समय के अनुसार अपने को ढाल लिया। और जब हम समय के अनुसार ढल जाएंगे तो समय हमें बहुत वरदान देगा। तो इन तीनों बातों को आप याद रखना और इस वरदानी समय का बहुत बहुत लाभ उठाना। ओम शांति।